progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سيرة الصحابة وخلفاء الراشدين، بلکہ اب سيرة عشرة مبشرة صحابة. اس کی کلاس کے اندر ہم کیا بات کر رہے تھے آخری؟ فرحان بھائی تو خوب تیاری کر گیا ہے. جی
पहली बार तुम्हारे थैंक यू सोच रहा कैसा कि मौका दे लोगों को फीडबैक करने की इजाजत दी।
चलें, इन्होंने बता दिया कि हमने ये सवाल किया था कि मक्का मुकरमा के लोगों को फाइट बैक करने की इजाजत क्यों नहीं थी. अब इसका जवाब भी आप ऐसे कोई बता दें. आप बता दीजिए.
उनको बाद में जाकर जाल बनना था और जो लोग बड़े
हाँ, बाद में जाके उनको सरदार बनने का लफ्ज हम नहीं कहेंगे, इमाम बनना था. ठीक है, इमाम बनना था, लीडर बनना था. तो जो लीडर होता है उसकी तरबियत की और भी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए कि उसके पास जो है ना वो ताकत होती है, अथॉरिटी होती है. और अगर उसकी तरबियत नहीं होती है तो वो फिर अथॉरिटी को जो है वो गलत इस्तेमाल करता है. ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे माशाल्लाह लीडरान बैठे हुए हैं. सही है, सारे के सारे लीडरान बैठे हुए. क्यों भाई, आप किस चीज के लीडर हैं? सारे लीडर बैठे हैं, क्यों? हाँ, ठीक है, लेकिन सारे के सारे माशाल्लाह यहाँ पे मर्द बैठे हुए हैं, रिजाल बैठे हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से आपको लीडरशिप दी हुई है. राइट, पहले से लीडरशिप दी हुई है. अर रिजालु कवामून अलन निसा. ठीक है, कि रिजाल जो है ना वो निसा के लीडर हैं, कवाम हैं, ऊपर हैं. ठीक है, तो जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग मेल्स. ठीक है, लेकिन लीडरशिप का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी. लीडरशिप का मतलब होता है अथॉरिटी विच हैज टू बी हैंडल्ड रिस्पॉन्सिबली. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने के लिए फिर तरबियत की जरूरत पड़ती है, तजकिए की जरूरत पड़ती है. तो इसी वजह से जो है वो जो भी लीडर बनने जा रहा होता है ना, तो उसको फिर ज्यादा तस्किए की जरूरत पड़ती है. आपको पता है, फौज के अंदर, चाहे वो इंडिया की फौज हो, चाहे पाकिस्तान की फौज हो, चाहे कहीं की भी फौज हो, वो जो ऑफिसर्स बनने जा रहे होते हैं ना, ऑफिसर्स की इतनी रिगरस ट्रेनिंग हो रही होती है, इतना उनकी कुटाई लगाई जा रही होती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफिसर अफसर बनना है. राइट, ऑफिसर बनना है. उनके नीचे जो है वो फिर सोल्जर्स होंगे और दूसरे किस्म के नॉन कमीशनड लोग होंगे. ठीक है, तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती है. अच्छा, तो हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, और इनकी हमने कुछ नबी अलैहिस्सलाम के साथ रिश्तेदारी के बारे में भी आपको बताया था कि ये फर्स्ट कजन थे और फुप्पीजाद कजन थे, मामूजाद, चचाजाद, खालाजाद कजन नहीं थे नबी अलैहिस्सलाम के, बल्कि फुप्पीजाद कजन थे. तो फुप्पी नबी अलैहिस्सलाम की कौन थी? हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा. तो सफिया रजान की, अन्हा रजान की बारे में जो बातें थोड़ी सी हमने पढ़ी, तो उसके अंदर फिर आप लोग अच्छी खासी डांट भी पड़ गई, बल्कि आपको तो क्या, आपकी अम्मियों को पड़ी थी. ठीक है, कि वो आपको कहानी जो है ना वो अच्छी तरीके से कुटाई लगाती हैं, गलत काम बर्दाश्त क्यों कर लेती हैं. ठीक है, खूसन वो गलत काम जिसमें आप किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, वर्बल या फिजिकल तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, तो उसको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ना. उसके ऊपर आपकी अच्छी से वर्बल कुटाई लगानी, और अगर वर्बल कुटाई से आप नहीं बाज आते तो फिर फिजिकल कुटाई लगाने की भी जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाएं उसके लिए, बल्कि तैयार होने का मतलब ये करें, फिर उसके बाद पिटने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि ना करें, ये होती है तैयारी. ठीक है, बहरहाल, तो वालिदा की अच्छी तरबियत के बारे में पढ़ा था. हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खातून थी. फिजिकली भी कुछ होती हैं ख्वातीन, अल्लाह ताला ने उनको फिजिकली भी स्ट्रांग बनाया होता है, तो उनके पास माशाल्लाह फिजिकल ताकत भी थी। इस तरह से उसका पता चलता है कि एक कंफर्म जो वाकया है हजरत सफिया रहता है ना का, तो वो गज़वाए खंदक का वाकया, ठीक है, जो हमने सिर्फ नबी में पढ़ा था जी।
कोई बंदा आ गया था अंदर क्रॉस करके उनकी तरफ, तो
जी
इधर जा रहा था हजरत सफिया, किसी और से भी पूछा था कि आप देखने में जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ता, तो सफिया खुद ही जाके
तो जजाकल्लाह। गज़वाए खंदक में ना मुसलमान तो बाहर निकल गए थे मदीना मुनव्वरा के बॉर्डर्स की तरफ, जहाँ पे के खंदक खोद रहे थे, तो वहां पे तो जाहिर है बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत थी। तो जितनी खवातीन थी ना, उनको फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक किले के अंदर, एक किला नुमा घर था, किले का मतलब होता है जिसकी के फसीलें, जो दीवारें वगैरह हों, जरा सी स्ट्रॉन्ग किस्म की दीवारें हों, उसके अंदर खवातीन को महफूज कर दिया था, ताकि अगर कोई काफिर कहीं से निकल आए, या इवन जो ज्यूज मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते थे, अगरचे कि उनके साथ मुआहदा हुआ हुआ था, लेकिन कुछ पता नहीं भाई काफिर का मुआहदा तोड़ दे, तो औरतों बच्चों को ऐसे सिक्योर कर दिया था। और उनके साथ हजरत हसान बिन साबित रज़ियल्लाहु भी मौजूद थे, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी और शायर किस्म के वो सहाबी थे, शायर रसूल, तो वो भी मौजूद थे। तो यहूदियों ने फिर सोचा कि यार हम जो है ना वो उस में जाकर के देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, और मोस्ट लाइकली वहां पे तो औरतें बच्चे होंगी, तो हम जो है ना इनको जाकर के इनको मारते हैं या जो भी करते हैं इनके साथ। तो यहूदी वहां पर आए, लेकिन वो किले की दीवार वगैरह सब बंद थी, तो एक यहूदी ने कहा कि मैं अंदर जाकर के देखता हूँ। तो वो किसी तरीके से ना दीवार फांद करके अंदर चला आया, ठीक है। अंदर जो है वो खवातीन तो फिर किले के अंदर भी टेंट्स के अंदर थी, ठीक है, लेकिन सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस यहूदी को देख लिया अंदर आते हुए। तो उन्होंने कहा ये तो अगर बाहर जाके बता देगा ना, तो वो लोग तो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे, फिर तो वो बहुत बुरा करेंगे हमारे साथ। तो इन्होंने हसान बिन साबित ताना से कहा कि भाई आप मर्द हैं, आप जाके, उन्होंने कहा मेरे तुम आपको पता है कि मेरे बस की ये बात नहीं, ठीक है, मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है, मैं हूँ भी जरा शायर किस्म का आदमी, तो लड़ना वड़ना जो है ना वो तो रहने दें आप, मैं दूसरे तरीके से लड़ता हूँ। और उन्होंने वाकई दूसरे तरीके से लड़के दिखाया, नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को ऐसा उन्होंने जलील करके अपनी शायरी के अंदर, उसी को तो लड़ना भी कहते हैं, दूसरी तरह की लड़ाई होती है, उनका काम था। तो सफिया ताना ने क्या किया, आप क्या बताने जा रहे हैं,
अच्छा
फांद, फांद का मतलब है छलांग मार करके ऊपर से आके, दीवार के ऊपर से छलांग मार के नीचे जाते हैं, उसको फांदना कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो टेंट्स लगे होते हैं ना, तो एक टेंट की चोब निकाली, यानी जो एक शायद वो जो लकड़ी की कीलें लगी होती हैं जिनसे के टेंट के रस्सी को बांधते हैं, आप लोगों ने जो कैंपिंग वगैरह करी थी उसमें भी ये काम किया था ना, तो उसको निकाला और पीछे से जा करके उसके सर पे इतना जोर से मारा कि उसका सर फट गया और वो मर गया उससे, इतना जोर से मारा। अब जाहिर है माशाल्लाह इनके पास इतनी फिजिकल ताकत भी थी कि वो मर ही गया ना, टेक्निकल नॉकआउट हो गया। अच्छा, खाली इन्होंने इस पे बस नहीं किया, बल्कि इंटेलेक्चुअल पावर भी थी इनके पास इतनी थी कि इन्होंने उससे आगे एक फाइनल काम ये किया, कितना इनके अंदर, राइट, आजकल तो बात हो रही थी घर में मुर्गी धोने से ना बच्चियों को डर लगता है मुर्गी के खून से भी डर लगता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके पास चीज थी, तलवार, खंजर, जो भी, उससे जो है ना वो उसका सर क्लिक, ठीक है, सर काटा और फिर उसको उठा करके दीवार से बाहर फेंक दिया, ठीक है, बंदे का सर, बकरे का सर, राइट, बंदे का सर उठा करके बाहर फेंक दिया। तो वहां पे जो बाकी यहूदी थे ना, उन्होंने कहा वे ये क्या है, इसका मतलब है अंदर भी फौज मौजूद है, तो वो भाग गए सारे के सारे वहां से, ठीक है ना। तो कितनी इन्होंने जहानत इस्तेमाल करी कि उन सबको भी भगा दिया, खाली एक बंदे को नहीं मारा, सबको भगा दिया, ठीक है। तो ये थी हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, और इनके और भी वाकयात हैं, लेकिन कोई इतना ज्यादा मशहूर, एक जैसे ओहद का इनका वाकया मशहूर है कि ओहद में इन्होंने खूब जो है वो फाइटिंग करी जा करके काफिरों के साथ, लेकिन वो जो मैदान जंग में जाके फाइटिंग करने वाले वाकयात है ना, उनकी उसके ऊपर काफी है कि नहीं, इसमें और यकीनी बात नहीं है कि एक्चुअली सहाबियात ने फाइटिंग करी है, बल्कि सहाबियात जो है मरहम पट्टी करने के लिए जाते, ठीक है। और ये भी इसी तरीके से बाद में तशरीफ लाई थी, जब इनको पता चला था कि इनके भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, तब वो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखने के लिए आई थी। बहरहाल ओहद का ये वाकया जो है, वो सॉरी खंदक का ये वाकया जो है ना, ये कन्फर्म है ऐसा इन्होंने किया था। अच्छा, फिर उसके बाद हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक और अहम बात। पिछली दफा एक्चुअली मैंने एक गलती में ना, एक गलत बात कह दी, गलत बात गलती में कहते हैं, वो ये कि जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए थे तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने उमूमी दावत शुरू करी थी, विच वॉज 2.5 years आफ्टर द फर्स्ट वही, ठीक है, पहली वही तो नबी अलैहिस्सलाम जब 40 साल के हुए थे उस वक्त वही नाजिल हुई थी ना, सूरह इकरा की जो शुरू की 5 आयात थी गारे हिरा में। लेकिन उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को उमूमी दावत देने की, यानी आम तौर पे जाके लोगों को इस्लाम के बारे में बताने की इजाजत नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये जो जमाना है इसको फितरत वही कहते हैं, फितरत ते वाली, ता वाली फितरत, ठीक है, तो वाली फितरत नहीं, ता वाली फितरत। तो इसमें जो है ना फिर वही रुक गई थी, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर मजीद कुछ नहीं आ रहा था कि अब आप दावत दे लोगों को, ऐसा नहीं आ रहा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 2.5 साल तक उमूमी तौर पर लोगों को दावत नहीं दी थी। फिर उसके बाद सूरह मुद्दस्सिर की आयत जब नाजिल हुई ना, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे फैमिली वालों को बुलाया एक जगह पे, फिर उन लोगों को जो है दावत दी। लेकिन खसूसी दावत नबी अलैहिस्सलाम ने तो फौरन ही देनी शुरू कर दी। अभी तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फौरन मुसलमान हो गई, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो है वो भी फौरन मुसलमान हो गए, अली रजी अल्लाह तआला फौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जैसे ही मुसलमान हुए वैसे उन्होंने दूसरों को बुलाना शुरू कर दिया जो उनके करीबी लोग थे, तलहा रजी अल्लाह तआला मुसलमान हो गए। उसी तरीके से हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला भी उसी वक्त मुसलमान हो गए थे, ठीक है। तो यानी 43 ईयर्स की एज में नहीं मुसलमान हुए थे नबी अलैहिस्सलाम की जब एज 43 हुई थी, बल्कि 40 ईयर्स की जब एज थी उसी वक्त नबी हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला भी मुसलमान हो गए थे, ठीक है। तो ये अंदाजन फोर्थ या फिफ्थ मुस्लिम थे, ठीक है, मर्दों में ही फोर्थ या फिफ्थ मुसलमान थे, ठीक है। तो कितनी इनकी अजीम इनकी पोजीशन बनती है, साबिकून अव्वलून में से, साबिकून अव्वलून उनको कहते हैं जो कि सबकत ले जाने वाले, ठीक है, और अव्वलून यानी बिल्कुल फर्स्ट इस्लाम में दाखिल होने वाले। अच्छा, फिर उसके बाद हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो सारे गजवात में शरीक हुए, और उसके अलावा भी जो छोटे छोटे नबी अलैहिस्सलाम मुहिम्मात भेजते थे ना, छोटी छोटी सरियात के लिए, ठीक है, कि 10 सहाबा की एक टीम को भेज दिया, कभी 100 सहाबा की टीम को भेज दिया, कभी 200 सहाबा की टीम को भेज दिया, कभी फलाने जगह पे जाके लड़ाई करो, तो उनमें से भी बहुत सारे सरियों के अंदर ये शरीक होते थे, ठीक है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की ये एक रिसोर्स थे मुसलमानों के लिए, मिलिट्री रिसोर्स, ठीक है। तो गज़वे बदर में भी शरीक हुए, गज़वे उहद में भी, गज़वे खंदक में भी, और हत्ता के खंदक के बारे में है कि एक दफा ना एक काफिर खंदक में कूद करके उतर गया, और वो भाग करके जो है वो दूसरी तरफ आना चाहता था कि आकर के मुसलमानों के ऊपर अटैक करे, तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको देख लिया और भाग करके उसकी तरफ गए और उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट इन टू, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा बहादुर ये थे, और जाहिर है कि पीछे जैसे हमने पढ़ा है कि वालदा की तरबियत ही इनकी ऐसी थी कि इनको जो है वो बहुत ही सख्त जान और ऐसा सा भी बनाया था, बहादुर दलेर। गज़वाए बदर और उहद के अंदर भी इन्होंने शुजाअत के जौहर दिखाए। लोग कहा करते थे कि जहां जुबैर होता है ना वहां पर तो जुबैर इज इक्वल टू 11 पीपल, ये अकेला नहीं होता बल्कि ऐसा लगता है कि ये 11 बंदों के बराबर होता है। हम उर्दू में भी एक मुहावरा होता है, एक अकेला 2 11, ठीक है, लेकिन ये एक अकेले ही 11 थे, ये 2 11 नहीं होते थे, ये एक अकेले ही 11 के बराबर काम करते थे। जी
अबू सलमान
सॉरी, इनके अब्बू नहीं, इनके अब्बू का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया था, तो वो मुसलमान नहीं हुए थे। एक दफा ना जब ये छोटे थे तो किताब में लिखा हुआ देखा कि चूंकि इनकी खूब ज्यादा पहलवानी वगैरह की तरबियत हुई थी, तो एक दफा इनकी किसी से लड़ाई हो गई और उस बंदे को जो है ना इन्होंने इतना मारा, अब वो मुसलमान होने का जमाना नहीं था वो उस वक्त से, वो पुरानी बात हो रही है, ठीक है, फिजिकल पावर इतनी थी, और जाहिर है फिर जवानी का जोश जज्बा भी होता है, एक दफा इनसे हो गया, इतना मारा उस बंदे को उसका हाथ ही टूट गया ना। ठीक है, तो इनकी अम्मी आई हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने उस बंदे को उठाया और उसको यानी सहारा दे, उठाया मतलब सहारा दे करके उसके घर तक पहुंचा। ठीक है, कि यानी इन्होंने तो हाथ तोड़ दिया था ना उस बंदे को, वो तो गिर ही गया था वो बंदा। ठीक है, तो बहरहाल ये बस एक वाकया था, इसकी कोई बाकी इसकी सनद वगैरह मुझे पता है। अच्छा, फिर यार बदर की जो गजवा था उसके अंदर इनको एक जख्म आया, जो कि इनकी गर्दन पे तलवार या तीर या नेजे किसी ने मारा था ना, गर्दन कटी तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बच गए ये, लेकिन गोश निकल गया गर्दन का ना। ठीक है, तो एक बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो हील हो गया, लेकिन एक गढ़ा सा बन गया उनकी गर्दन के अंदर। ठीक है, तो हजरत ने फरमाया कि उनके जख्म की गहराई की वजह से ना एक गढ़ा बन गया था उनकी गर्दन में, तो बच्चे ना उसके अंदर उंगली डाल करके खेला करते थे। जी, नबी अलैहिस्सलाम ने अच्छा उनका नेजा मांगा एक दफा, बल्कि बदर के ही मैदान में जब लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफिर को अपना नेजा मारा, तो काफिर खत्म। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को ये बात, इनकी जो इन्होंने ये बहादुरी दिखाई, ठीक है, इतनी पसंद आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने जंग खत्म होने के बाद उनसे वो नेजा मांगा। ठीक है, कि ये नेजा तुम मुझे दे दो, आई विल कीप इट एज ए सोवेनियर, आई विल कीप इट एज ए सोवेनियर। नबी अलैहिस्सलाम ने उस नेजे को अपने पास रखा, और जाहिर है जब नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, इसी किस्म की चीजें थी ना, ठीक है, या नॉलेज, ठीक है, तो जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उसके बाद वो किसको मिली? नबी अलैहिस्सलाम की औलाद को नहीं मिली ये नेजा, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद को नहीं मिला ये नेजा, फिर खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को मिला। ठीक है, उनके पास रहा, फिर उनके इंतकाल के बाद ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को मिला। ठीक है, उनके पास रहा, लेकिन उनके पास हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर मशहूर सहाबी, ठीक है, वो उमर अतान के पास एक दिन आए और फरमाने लगे कि ये नेजा मेरे वालिद साहब की चीज है। इनके वालिद उस वक्त हयात थे, वालिद का इंतकाल तो बहुत बाद में जाकर हुआ है जुबैर अतान का, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर अतान को अपने अबू से इतनी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि ये जो नेजा है ना, ये जो कि मेरे अब्बू का नेजा था, तो ये मेरे पास रहे तो कितना अच्छा। तो उन्होंने इजाजत ली उमर अतान से, उमर अतान कहा हाँ ठीक है ये नेजा तुम ले जाओ। ठीक है, तो वो नेजा फिर उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम क्यों किया कि एक बंदा मर रहा है तो उसको जिस चीज से मारा गया तो उस चीज को जो है वो बहुत ही यानी इतना उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि बंदा मर रहा है। ठीक है, तो ये हमें तो आजकल तो अच्छी तरह बात नहीं लगती है, मुझको बंदा मार दिया और आपने जो है वो जिस चीज से मारा है उस चीज को आप बड़ी इज्जत दे रहे हैं, बड़ा इकराम कर रहे हैं उसको, उसको सोवेनियर। हम तो जाते हैं तो हम तो नायग्रा फॉल्स जाते हैं तो नायग्रा फॉल्स का छोटा सा, हमारे सोवेनियर्स क्या होते हैं? नायग्रा फॉल्स का शैम्पेन ग्लास, राइट, शॉर्ट ग्लास जिसको कहते हैं, या हम कहीं और जाते हैं तो वहां की कोई और चीज हम एज अ सोवेनियर, बंदा मारने वाली चीज तो हम सोवेनियर नहीं रखते ना। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम क्या थे? वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमी। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो आलमीन के लिए रहमत, आलमीन के लिए रहमत, आलमीन के लिए मर्सी। तो फिर बंदा मारना और बंदा मारने वाला जो नेजा है उसको सोवेनियर के तौर पर रखना, तो दैट डज नॉट क्लिक इन और दैट डज नॉट सिंक इन। ठीक है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? आप ही बताएं।
जिस अल्लाह के दुश्मन को खत्म किया गया तो उसकी वैल्यू होगी यूज टू
अच्छा,
एलिमिनेट
दैट पर्सन वॉज सो बैड, दैट्स वाई एवरीथिंग दैट वॉज हार्मफुल फॉर दैट पर्सन वॉज गुड। अबू खालिद साहब का जवाब, अबू खालिद साहब के हिसाब से सही है वैसे। और कोई? ठीक
ठीक है सर। थैंक यू। इस्लाम क्या
इस्लाम क्या है? इस्लाम किस चीज को कहते हैं? मेरे अब्बू के दीन को इस्लाम कहते हैं, एंड आई लव माय डैड, दैट्स व्हाई आई लव हिज रिलीजन, राइट। मेरे दादा के दीन को, मेरे दादा अब्बू जो है ना, वो मुसलमान हैं, इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, एंड आई लव माय दादा अब्बू, सो आई लव इस्लाम।
बताए
उसको
अल्लाह ताला
इस्लाम कहते हैं।
की चाहत वो चाहते हैं उसको।
ठीक है, इस्लाम जो है ना, वो इस्लाम इज इक्वल टू ओबीडियंस ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द ट्रूथ। ठीक है, इस्लाम जो है ना, वो चॉइस है, ठीक है, जो के क्रिएटर की बताई हुई चॉइस, कि आई हैव चोजन इस्लाम एज अ दीन फॉर यू। ठीक है, क्या है वो आयत? फादर करा, हुआ
अल्लाह
रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये अब्बू कह रहे हैं, सिंस आई लव माई अब्बू सो आई लव इस्लाम, एंड अब्बू हैज चोजन इस्लाम फॉर मी, राइट, या अम्मी हैज चोजन इस्लाम फॉर मी, या दादा अब्बू हैज चोजन इस्लाम फॉर मी। और क्या ये नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो रदीतु लकुम अलिस्लाम दीना? ये किसके अल्फाज है, या नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है? नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम, डिस्पाइट ऑल द ग्रेटनेस, ही इज नॉट आवर क्रिएटर, राइट, ही इज नॉट आवर क्रिएटर, ही इज नॉट इवन आवर सस्टेनर, राइट। नबी अलैहिस्सलाम हमारे खालिक नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम हमारे राजिक नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब है। किसके हबीब है? अल्लाह के हबीब है। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह कादिर है, राइट, अल्लाह वदूद है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह कहार है, राइट, जो कुछ भी है वो अल्लाह है। ठीक है, तो अल्लाह ने ही बनाया, अल्लाह ने ही डिफाइन किया कि ये तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है, व्हेन यू डू दिस देन यू विल बी सक्सेसफुल इन माय ओन आईज एंड इन योर ओन लाइफ। ठीक है, तो अब दुनिया के अंदर नबियों को क्यों भेजा? कि नबी ये बात कन्वे करते हैं, नबी ये बात कन्वे करते हैं, बताते हैं कि भाई अल्लाह ने जो बनाया है ना, तो अल्लाह ने अब हमें ये बताया कि हम तुमको बताएं कि भाई दिस इज द वे, मेरी चॉइस ये है कि तुम इस तरीके के ऊपर अमल करो, तुम कामयाब होगे, और अगर नहीं करोगे ना तो तुम नाकाम हो, तुम्हें नुकसान होगा। ठीक है, तो नबी फिर क्या करते हैं? ये बात कन्वे करते हैं। इस कन्वे करने को क्या कहते हैं? दावत देना, तबलीग करना। ठीक है, दावत और तबलीग का काम। तो ये दावत और तबलीग का काम जो है ना, ये क्या है? ये इंसानों के लिए इज इट ए ब्लेसिंग और इज इट ए कर्स? दावत और तबलीग का जो काम है, ये इंसानों के लिए एक रहमत है या इंसानों के लिए ये जहमत है? ठीक है, थोड़ा सा ये हाई लेवल की बात हो रही है, लेकिन आई एक्सपेक्ट के जो बड़े बच्चे हैं वो बात उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, दावत और तबलीग का जो काम है ये क्या है? रहमत है। ठीक है, ये ब्लेसिंग है, ये कर्स नहीं है, ये जहमत नहीं है, ये नुकसान नहीं है, बल्कि ये रहमत है। तो नबी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दावत का काम करो, दावत का काम करो। जो नबी अलैहिस्सलाम जो दावत का काम करते हैं ना, वो यही है कि भाई ये अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है, इसके ऊपर आ जाओ, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और पीसफुल हो जाएगी, और तुम्हारी मरने के बाद भी जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है वो भी पीसफुल हो जाएगी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने डिफाइन किया कि ये दावत का काम जो है ना, ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, इसके लिए तुम कुर्बानियां देते रहो, लोग तुम्हें मारे कोई बात नहीं, तुम फिर भी दावत का काम करते रहो, लोग तुम्हें जलील और रुसवा करें कोई बात नहीं, तुम फिर भी दावत का काम करते रहो, लोग तुम्हारी बात ना माने, राइट, तुम्हें धक्का दे करके नीचे गिरा दें, तुम्हारे कुछ भी कर दें, तुम फिर भी दावत का काम करते रहो। लेकिन अल्लाह ताला ने डिफाइन किया कि दिस विल एंड एट ए पॉइंट, ये दावत का काम एक पॉइंट पे जा करके ये टेम्पोरारिली ये दावत का काम जो है इसको तुम स्विच ऑफ कर दो। वो क्या, वो टेम्पररी टाइम, वो क्या आता है कि जिसके अंदर ये दावत का काम जो है वो पावर ऑफ करना होता है ना, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब, ये दावत हो रही है, नहीं? ये दावत हो रही है, बल्ब जल रहा है, दावत हो रही है। अब आपको हुक्म मिलता है, नहीं अब थोड़ी देर के लिए आप इस बल्ब को बंद कर लें, ठीक है, अब आप इस बल्ब को बंद कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं, नहीं अब आप दोबारा इस बल्ब को जला लें, यानी दावत को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दो, और थोड़ी देर के बाद जब तुम्हें कहेंगे ना फिर से उसको स्विच ऑन कर देना। तो इसी तरीके से दावत का काम स्विच ऑफ किस टाइम पे किया जाता है, जी जंग के टाइम पर, जब जंग शुरू हो चुकी, ठीक है, जब जंग शुरू हो चुकी, फायरिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना फिर अब दावत नहीं देनी है। मारने से पहले पूछ रहे हैं कलमा पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, अच्छा मारूंगा, वो उससे पहले वो मार देगा, राइट, उससे पहले वो मार देगा। अमेरिका के अंदर पता है क्या होता है, अमेरिका के अंदर जो है ना, ये जो कभी स्ट्रीट पे कोई रोड के ऊपर कोई होता है ना, कार कार चेज वगैरह हो रहा होता है, तो पुलिस मैन जो होता है ना, जो उसको चेज कर रहे होते हैं, तो अच्छा एक दफा मेरे साथ हुआ, राइट, मैं और मेरा दोस्त जो है ना वो गाड़ी में जा रहे थे, तो बिल्कुल नए नए हम अमेरिका पहुंचे थे, तो पीछे से पुलिस वाला आ गया, तो पुलिस वाले वो ना कुछ हम कुछ मेरे दोस्त गाड़ी चला रहा था, उसने कुछ गड़बड़ करी थी ना, वो पता नहीं क्या, उसने राइट टर्न कर दिया था जहाँ पे राइट टर्न नहीं करना चाहिए था शायद, नो राइट नो टर्न ऑन राइट, तो खैर उसने कर दिया, तो पीछे से पुलिस वाला आ गया, पता नहीं कहाँ छुपे हुए होते हैं ये लोग, एकदम से आ गया, उसने अपने साइरन्स ऑन करे, तो दोस्त साहब ने जो है ना वो गाड़ी बंद कर दी, ठीक है, रोक दी, ठीक। अब हमें क्या पता, हम तो पाकिस्तान से भी पहुंचे थे, ठीक है, तो जो मेरा दोस्त है ना उसने दरवाजा खोला और वो एकदम से जो है ना वो जैसे कि पुलिस की गाड़ी की तरफ जाने लगा, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, पुलिस वाले रोकते हैं ना तो पुलिस वाले जो है फिर कहते हैं कि अब आप आए हमारे पास, हम आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है, तो हमें आदत होती है कि हम पुलिस वाले की तरफ भागते हैं, तो उसने ना उसको उधर ही रोका, स्टे राइट देयर, ठीक है ना, तुम अगर मेरे पास ऐसे आओगे ना, बिफोर यू कम आई विल हैव टू शूट यू, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, इसलिए कि मुझे क्या पता भाई तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो, तो मुझे किस करने क्या करने के लिए आ रहे हो। तो पुलिस को ये ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई इस तरह से आपको अप्रोच करता है ना, यू हैव टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट। इसी वजह से अमेरिका के अंदर हर थोड़े दिन के बाद ये खबर आती है, पुलिस शूटिंग हो गई, किसी काले को मार दिया, पुलिस शूटिंग हो गई, किसी दूसरे को मार दिया, अच्छा मारते तो वो सबको हैं जो भी असिस्म की हरकत करता है, लेकिन हेडलाइन क्या बनती है जब काले को मारते हैं, राइट, वो हेडलाइन बनती है जब गोरे को मारते हैं तो हेडलाइन नहीं बनती, ये चक्कर हर जगह चल रहा होता है इस तरह का ना, क्योंकि वो फिर वही वो अपनी आवाज उठानी होती है और उल्टे सीधे काम करने होते हैं, बहरहाल। तो खैर, तो जब जंग हो रही होती है, ये वाकई आपको ऐसी सुना दिया, लेकिन जंग जब हो रही होती है ना, तो उस वक्त आपको अपने आप को सेव करना होता है, ठीक है, और अगला बंदा जो है वो उस तक दावत हो चुकी है, दावत पहुंच चुकी है। इसी वजह से दीन इस्लाम के अंदर जिहाद का तरीका क्या है कि पहले जो ओपोनेंट्स हैं उन तक एक बार फिर आप दावत दें, उनको फिर बुलाएं, इवन मैदानी जंग में अभी फाइटिंग शुरू नहीं हुई है, पहले आप दावत दें, जब वहां से इनकार हो जाए तब फाइटिंग शुरू हो। अगर आपने दावत नहीं दी और उसके बगैर ही फाइटिंग शुरू कर दी, आपका ये जहाज जो है वो जायज नहीं हो, आपका जहाज जायज नहीं हो, ठीक है। तो उस एंड तक जो है ना, वहां तक जो है वो दावत तबलीग का हुक्म है, लेकिन वंस इट इज एन ऑल आउट अफेयर, उसके बाद फिर आप दावत नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो शख्स अब आपसे फिजिकल फाइटिंग कर रहा है ना, उसने चूज कर लिया है कि ही वॉन्ट्स टू डाई ऑन द फेथ दैट ही इज ऑन, उसने ये फैसला कर लिया कि मैंने मर जाना है, क्योंकि भाई जब आप मैदान जंग में आ गए तो अब तो आपने इंटेंशनली फैसला करके आए ना कि भाई मैदान जंग से तो फिर अब जाने का कुछ पता नहीं होता, कि नहीं मैंने अपने फेथ के ऊपर ही मरना है, ठीक है। तो इस वजह से मैदान जंग के अंदर जो मरता है ना बंदा काफिर, तो अब ये क्या है कि ये एक ऐसे शख्स को आप मार रहे हैं कि जो कि फाइनल जिसका फैसला हो चुका कि इसने जो है वो अल्लाह की मुखालफत करनी है, अल्लाह के नबी की मुखालफत करनी है, अब अल्लाह के दीन की इसने मुखालफत करनी है, ठीक है। इसने उस रास्ते को जिसको कि इसके क्रिएटर ने बनाया था, डिफाइन किया था, इसने फाइनल डिसीशन दे लिया है कि नो आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस, आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस, ठीक है। तो अब ऐसा शख्स जो होता है, चूंकि इसका कंफर्म जहन्नुम का मामला हो चुका होता है, मर गया, अब ये कुफर के ऊपर मर गया, ठीक है। तो अब इसके साथ जो होती है ना फिर दीन इस्लाम के अंदर, अब इसके साथ रहम दिली वगैरह का कोई मामला नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने खुद चूज किया है, और जाहिर है फिर उसके बाद अल्लाह ताला का भी ये फैसला है कि अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम में डालना है। तो इस वजह से दुनिया के अंदर भी पैगंबरों ने फिर क्या सिखाया कि इस शख्स को जो है ना फिर इसकी इवन बॉडी को भी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, इसी वजह से काफिर की बॉडी को जो है वो प्रॉपर बेरियल वगैरह भी हमारे दीन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस शख्स जिसने के कुफर के ऊपर मरने का फैसला कर लिया था, और हजरत जुबैर अल्ताना उन्होंने इस तरीके से फिर उसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, तो इस बात को फिर नबी अलैहिस्सलाम ने प्रेस किया। तो इस तरह के वाकयात हमें सीरत के अंदर कई बार कई जगहों पर मिलते हैं, तो भी बेटर बी क्लियर अबाउट दिस, अदरवाइज क्या होगा, इफ यू आर नॉट क्लियर शैतान आगे गएगा, ओ दिस इज नॉट मर्सी, ये तो रहमदिली नहीं है, ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ये तो फिर गलत काम हो गया, और इस तरीके से जो हमारा दुश्मन शैतान है वो हमें दीन के खिलाफ कर दे, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो इस वजह से वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग बेटर आस्क, यू शुड आस्क, ठीक है। जाहिर है हम जिस स्कूल से पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कॉलेज किसने बनाया, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, या जिस मीडिया को हम सुनते हैं, या जिन बुक्स को हम पढ़ते हैं, वो किसकी लिखी हुई बुक्स होती हैं, वो किसके बनाए हुए कॉलेज और स्कूल होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के हैं ना, या मशाइख के बनाए हुए स्कूल होते हैं ना, या मुसलमानों के बनाए हुए मीडिया होते हैं ना, होता है नहीं होता है, ठीक है। किसका बनाया होता है भाई, नॉन मुस्लिम्स का, ठीक है, जिनका कि अभी तक तो कोई इरादा नहीं है मुसलमान होने का, जिनका तो अभी तक कोई इरादा नहीं है अल्लाह के दीन को जो है वो सच्चा मानने का, तो उन्होंने फिर इस तरीके से अपने स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का जहन बना दिया होता है कि भाई ये जो है ना मर्सी, इसको कहते हैं जो उसको हम कहते हैं मर्सी, और इसको जो है वो जुल्म कहते हैं जिसको हम कहते हैं जुल्म। तो अब क्या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर क्या लिखा हुआ है जो बताया था आप लोगों को चंद दिन पहले, किसी को याद है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर क्या लिखा हुआ बताया था आपको, पहले आप बताएं।
नहीं
नहीं, वो तो बताया था लेकिन वो ब्रिटानिका से तो रेफरेंस करके नहीं बताया,
तो उस पर ये कहते हैं सफाई ये देते हैं कि अगर हम ये नहीं करते तो there have been a mass killing of our people.
ठीक है। ये वैसे मैंने डायरेक्टली इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब के अंदर पढ़ा, एंड आई ट्रस्ट हिम इवन मोर देन एनी अदर सोर्स, ठीक है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर जब आप हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए ना, तो उनके बारे में जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो पहले ये लिखते हैं कि अगर हम बॉम्ब ना गिराते तो फिर मिलियन या पता नहीं कितने 100,000 जो है ना वो ब्रिटिश सोल्जर्स को जापानीज मार देते, और इतने सारे जो एलाइज को जो है वो जापानीज मार देते। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया बेसिकली कि ये डिफाइन कर रहे हैं कि देखो हमने जो हिरोशिमा के ऊपर नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है जिससे सारी इंसानियत वहां पे मेल्ट हो गई, ठीक है, दिस वॉज एन एक्ट ऑफ मर्सी, ठीक है ना, क्योंकि इसके जरिए से जो है वो हमने सपोजिटली जो इतने मारने जा रहे थे जापानीज फोर्सेस तो हमने उनको बचा लिया। तो भाई साहिर है वो अपने साइड ऑफ द स्टोरी ये बयान करेंगे ना, अपने तौर पर ही चीजों को डिफाइन करेंगे ना। ठीक है, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनकी साइड ऑफ द स्टोरी से रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हो कि रियलिटी क्या है। ठीक है, तो वो तो भाई अपनी रे जिसको वो रियलिटी समझते हैं, जिसको वो मर्सी समझते हैं, वो बताएंगे बताएंगे ना अपनी किताबों के अंदर, और वही पढ़ाएंगे अपने स्कूलों के अंदर। ठीक है, तो हमारा काम ये तो नहीं था कि हम जो है वो अपने बच्चों को उनके पास भेज करके तालीम हासिल करवाएं। तो पहला काम जो हमें करने का है ना, पहला काम जो हमें करने का है, क्या करना है हमने, पहला काम सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें,
गलत समझना
ठीक है वो तो समझना है, वो यहां से पहला काम करना है, हाथों से पहला काम करने का क्या है, दिमाग में पहला काम तो ये करना है कि उनको गलत समझना है और अपना समझ को क्लियर, लेकिन वो दिमाग का काम है। तो राइट नाउ आई एम आस्किंग के हाथ पैर से हमें पहला काम करने का क्या।
नहीं
कल बयान में भी बताया था जी, वो तौबा भी इधर से लगता है, हाथ पैर से तौबा नहीं होती। तो हमें फिजिकल एक्शंस के अंदर पहला काम फॉर ऑन अ सोसाइटी लेवल, चले और आपके लिए आसान बनाने के लिए ऑन अ सोसाइटी लेवल हमें सबसे पहला काम क्या करना है। ठीक है, अंकल्स के लिए भी ये सवाल की जाए, अरे
हमें हमें ये जहाज जो है उसको छोड़नी है अभी बात
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कि चले आप कुछ कहने वाले ना,
किताबों को निकालना हो
वेरी क्लोज, ठीक है, दैट इज द आंसर। हमें सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना है, हमने सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना है ताकि ये जो हमारी नस्लें पूरी पूरी हमारी जनरेशंस कॉन्स्टेंटली दे आर बीइंग ब्रेन पोल्यूटेड, कॉन्स्टेंटली ब्रेन पोल्यूशन, कॉन्स्टेंट ब्रेन पोल्यूशन, राइट, एवरी चाइल्ड हु गोज टू स्कूल दैट वॉज क्रिएटेड बाय आवर एनिमीज, अल्लाहज एनिमीज, रसूलुल्लाहज एनिमीज, राइट, एवरी चाइल्ड दैट गोज देयर बिकम्स अ पोटेंशियल एनिमी, ठीक है ना, बिकम्स अ पोटेंशियल, यानी जिसके के जहन जो होता है ना वो बिल्कुल खिलाफ हो चुका होता है अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई जो दीन है विच इज द डेफिनेशन वो मैसअप हो चुकी होती हैं इसके अंदर, राइट, हेल्थ सिस्टम इज नॉट सच अ बिग प्रायोरिटी, राइट, अदर सोशल सिस्टम्स दे आर नॉट सच अ बिग प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज एजुकेशन, है ना, काफिर भी यही कहता है ना फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके पता है कि उसने इन मौलवियों के मुसलमानों के बच्चों को अपना वफादार बनाना है कैसे, एजुकेशन के जरिए से बनाना, तो वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जो है वो एजुकेशन के अंदर कर, ठीक है, और हम जो है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जो है वो हथियार बनाने में करते हैं, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, हथियार बनाने के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और हथियार किनके हाथ में, वो भी वही जो कि उनके एजुकेशन से पढ़ करके बाहर निकले, जो कि उनके एजुकेशन से पढ़ करके बड़े हुए हैं, तो तुम हथियार बना बना के किसको दे रहे हो, उनको ही तो दे रहे हो, उन्हीं के तो हवाले कर रहे हो, राइट, जो कि उन्हीं के हैं, जो कि उन्हीं के वफादार हैं, जो कि उन्हीं की तरह सोचने वाले, एजुकेशन सिस्टम ही चेंज करना, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना इतना मुश्किल काम बना हुआ है हमारे लिए कि हमारे बड़े बड़े अकाबरीन जो हैं, अल्लाह वाले, आप जब सुनते हैं ना मुस्लिम हीरोज क्लास के अंदर, कैसे कैसे वली अल्लाह, कैसे कैसे अकाबरीन, कैसे कैसे जो है वो फरिश्ते नाजुल हो रहे हैं, है? फरिश्ते नाजुल हो रहे हैं, ये अकाबरीन एजुकेशन सिस्टम नहीं मना सके। कान खोल के सुन लो इस बात को, ये जिनके बयानात के अंदर फरिश्ते नाजिल होते हैं ना, ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सके। नॉट दैट दे डिडंट वांट टू डू इट, ऑफ कोर्स दे डिडंट वांट टू डू इट, ऑफ कोर्स उनको ये बात पता थी कि सबसे अहम चीज एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके, इनका कसूर है, क्यों नहीं बना सके एजुकेशन सिस्टम? जी जी शान,
एग्जैक्टली
अवाम नहीं चाहती ये एजुकेशन सिस्टम, हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम वाला एजुकेशन सिस्टम बने। हम इतना नहीं खेलना चाहते दीन के साथ यानी हम इतना दीन के साथ तो खेल ही रहे हैं वैसे, हम इतना दीन दीन नहीं खेलना चाहते, ठीक है ना, हम इतना भी सीरियस नहीं रहना चाहते इसको। हाँ, दाढ़ी उगा ली, इतना तो एहसान कर लिया यार, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतना तो एहसान किया है कि दाढ़ी रख ली है, टोपी पहननी शुरू कर दी है, इमामा पहनना शुरू कर दिया है, जुब्बे पहनने शुरू कर दिए हैं, राइट, माशाल्लाह काला इमामा भी, ठीक है, सब कुछ पहनना शुरू कर दिया है। इतना नहीं करना, एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करना मुझसे, ठीक है जी, आप क्या कह रहे हैं?
ऑन द कॉन्ट्री, उस वाले एजुकेशन सिस्टम की ही डिमांड।
उसी की डिमांड है। तो अकाबरीन जो है ना, पता है क्या, एक मजे की बात आपको सुना करके हम बात खत्म कर देते हैं। मुफ्ती तजुल इस्मानी साहब कितने बड़े शेख उल इस्लाम, राइट, दुनिया में उनका डंका बचता है, राइट, दुनिया में उनको रे शेख उल इस्लाम है, जैसे कि ये आज हुक्म दे देंगे ना कि इसराइल पे हमला कर दो, सारे जाके इसराइल पे हमला कर देंगे, गजा को आजाद कर लेंगे, ऐसा ऐसा समझते हैं मुफ्ती तजुल इस्मानी हो, इतने बड़े शेख उल इस्लाम है, ठीक है। मुफ्ती तजुल इस्मानी दामत बरकातुहुम अपने नॉलेज, जो कि बड़े लोगों से सुना कि इवन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह से आगे बढ़ गए, उन्होंने खुद भी यही कहा था, मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़ जाएगा, इतना बड़ा इल्म इनका, इतनी जो है वो सो कॉल्ड हमारी नजर में इज्जत भी, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी हैज नॉट बिन एबल टू क्रिएट वन स्कूल जो कि एक्चुअल इस्लामिक एजुकेशन के मुताबिक चल रहा हो। मदरसे की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर आपको तफसीर हदीस और ये सब पढ़ा, वो तो एक स्पेशलाइजेशन का, वो तो एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं दीनी उलूम के अंदर, इट्स नॉट अ स्कूल, वो मदरसा कोई थोड़ी है एक्चुअली। एक उन्होंने बनाया है जिसको कि हेरा फाउंडेशन स्कूल कहते हैं, उसके अंदर भी क्या पढ़ाते हैं, कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम, राइट, उसमें भी ओ लेवल्स की किताबें पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं भाई? इसलिए कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता इसके अलावा, और कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता इसके अलावा कोई और चीज़, ठीक है। अच्छा चलो भाई, मदर हेरा फाउंडेशन स्कूल बन गया, तो अब कुछ लोग जो है ना वो उन्होंने अपने बच्चों को हेरा फाउंडेशन भेज दिया, ठीक है, अब हेरा फाउंडेशन के अंदर उन्होंने ओ लेवल तक कर लिया, अब उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार, बहुत 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 हमने मौलवियों के साथ पढ़ा दिया अपने बच्चों को, अब ये खराब हो जाएंगे, अब ये मजीद पढ़ाए ना तो अब ये खराब हो जाएंगे, तो अब जो है ना सबने उनको वहां से निकाल लिया, और जाकर के वही अल्फा कॉलेज, तो बीटा कॉलेज, तो पापा कॉलेज, तो डेल्टा कॉलेज, वहां पे जाकर एडमिशन करवा दिया, सिवाय हमारे फरहान कमर भाई के और एक दो और लोग थे खाली, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम स्कूल बनाए, इस्लामिक स्कूल बनाए, ठीक है, इस्लामिक स्कूल के अंदर भी सारा वही निज़ाम, ठीक है। तो अभी जो है वो पिछले हफ्ते खबर आई कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बेटे ने एक डिफरेंट किस्म का एजुकेशन सिस्टम बनाया, ठीक है ना, एक डिफरेंट किस्म का, जिसके अंदर के एक कोशिश कर रहे हैं, पता है कितने बच्चे उसमें एडमिशन हुए? 9 बच्चे, 9, 9, कराची के शहर के अंदर, जहां पे दाढ़ियों की, अब माशाल्लाह सड़क पे दाढ़ियां मिलती हैं जैसे ना, फ्री में दाढ़ियां मिल रही हैं आजकल, और फ्री में मदरसे जैसे के खूब खुल रहे हैं, और ये हो रहा है, वहां पे 9 बच्चे आए हैं उस पायलट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और वो भी कुछ पता नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो अगर सक्सेसफुल हो गया तब उसको फिर दूसरी जगह पूरे स्कूल के अंदर उसको राइज किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना जरूरी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए जो है हम बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो हम छोटे लोग क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े लोग जो है वो नहीं बना सके, इतना रूहानियत वाले, इतना जो है वो फरिश्तों वाले, और इतना जो है वो इल्म वाले, और इतना सब कुछ वाले, ठीक है। लेकिन इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर सारी बातें जो है ना वो बिल्कुल फजूल बात, बस वो है, बस पैच वर्क है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उसको भी कबूल कर लेते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दें और हमें अजाब से बचा लें, ठीक है। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। दुनिया के अंदर नथिंग इज गोइंग टू चेंज अनलेस एंड अनटिल यू हैव योर ओन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, विच इज एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजुकेशन सिस्टम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम कमजोरों के साथ मेहरबानी का मामला करके अपनी कुदरत से जो है ना वो कुछ कर दें, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे बच जाएं, हमारे अपने बच्चे जो हैं, जो कि आप लोग हैं, वो बच जाएं। बस अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। वो आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह। अटेंडेंस के लिए जहीर अंकल को